यसाया बाब एक। ज़ैल में वो रुयाएं दर्ज हैं जो यसाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के बारे में देखी और जो उन सालों में मुनकशफ हुई जब उज़िया, योताम, आखज और हिजकिया यहूदा के बादशाह थे। ऐ आसमान मेरी बात सुन, ऐ जमीन मेरे अल्फाज पर कान धर, क्योंकि रब ने फरमाया है, जिन बच्चों की परवरिश मैंने की है और जो मेरे जेरे निगरानी परवान चढ़े हैं, उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। बैल अपने मालिक को जानता और गधा अपने आका की चरनी को पहचानता है, लेकिन इसराइल इतना नहीं जानता। मेरी कौम समझ से खाली है। ऐ गुनहगार कौम, तुझ पर अफसोस। ऐ संगीन कसूर में फंसी हुई उम्मत, तुझ पर अफसोस। शरीर नस्ल, बच्चलन बच्चे, उन्होंने रब को तर्क कर दिया है। हाँ, उन्होंने इसराइल के कुद्दूस को हकीर जानकर रद्द किया, अपना मुंह उससे फेर लिया है। अब तुम्हें मजीद कहाँ पीटा जाए, तुम्हारी जिद तो मजीद बढ़ती जा रही है। वो पूरा सर जख्मी और पूरा दिल बीमार है। चांद से लेकर तलवे तक पूरा जिस्म मजरूह है। हर जगह चोटें, घाव और ताजा ताजा जर्ब लगी हैं, और न उन्हें साफ किया गया, न उनकी मरहम पट्टी की गई है। तुम्हारा मुल्क वीरान वो सुनसान हो गया है, तुम्हारे शहर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे देखते देखते परदेसी तुम्हारे खेतों को लूट रहे हैं, उन्हें यूं उजाड़ रहे हैं जिस तरह परदेसी ही कर सकते हैं। सिर्फ यरूशलेम ही बाकी रह गया है, सियोन बेटी अंगूर के बाग में झोपड़ी की तरह अकेली रह गई है। अब दुश्मन से घिरा हुआ ये शहर खीरे के खेत में लगे छप्पर की मानिंद है। अगर रब्बुल अफवाज हम में से चंद एक को जिंदा न छोड़ता तो हम सदोम की तरह मिट जाते, हमारा उमूरा की तरह सत्यानाश हो जाता। ऐ सदोम के सरदार, रब का फरमान सुन लो। ऐ उमूरा के लोगों, हमारे खुदा की हदायत पर ध्यान दो। रब फरमाता है, अगर तुम बेशुमार कुर्बानियां पेश करो तो मुझे क्या, मैं तो भस्म होने वाले मेढों और मोटे ताजे बछड़ों की चर्बी से उकता गया हूँ। बैलों, लेलों और बकरों का खून मुझे पेश किया जाता है, वो मुझे पसंद नहीं। किसने तुमसे तकाजा किया कि मेरे हुजूर आते वक्त मेरी बारगाहों को पांव तले रौंदो? रुक जाओ, अपनी बेमानी कुर्बानियां मत पेश करो, तुम्हारे नजूर से मुझे घिन आती है। नए चांद की ईद और सबत का दिन मत मनाओ, लोगों को इबादत करने के लिए जमा ना करो, मैं तुम्हारे बेदीन इस्तमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम नए चांद की ईद और बाकी तकरीबन तकरीबात मनाते हो तो मेरे दिल में नफरत पैदा होती है, ये मेरे लिए भारी बोझ बन गई है जिनसे मैं तंग आ गया हूँ। बेशक अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते जाओ, मैं ध्यान नहीं दूंगा। गो तुम बहुत ज्यादा नमाज भी पढ़ो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। पहले नहाकर अपने आप को पाक साफ करो, अपनी शरीर हरकतों से बाज आओ ताकि वो मुझे नजर ना आए। अपनी गलत राहों को छोड़कर नेक काम करना सीख लो, इंसाफ के तालिब रहो, मजलूमों का सहारा बनो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवाओं के हक में लड़ो। रब फरमाता है, आओ हम अदालत में जाकर एक दूसरे से मुकदमा लड़ें। अगर हमारे गुनाहों का रंग किरमिजी हो जाए तो क्या वो दोबारा बर्फ जैसे उजले हो जाएंगे? अगर उनका रंग अरगवानी हो जाए तो क्या वो दोबारा ऊन जैसे सफेद हो जाएंगे? अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो तो मुल्क की बेहतरीन पैदावार से लुत्फंदोज होगे, लेकिन अगर इनकार करके सरकश हो जाओ तो तलवार की जद में आकर मर जाओगे। इस बात का यकीन करो, क्योंकि रब ने ये कुछ फरमाया है। ये कैसे हो गया है कि जो शहर पहले इतना वफादार था वो अब कस्बी बन गया है? पहले यरूशलेम इंसाफ से मामूर था اور راستی اس میں سکونت کرتی تھی، لیکن اب ہر طرف قاتل ہی قاتل ہیں۔ اے یروشلم، تیری خالص چاندی خام چاندی میں بدل گئی ہے، تیری بہترین مے میں پانی ملایا گیا ہے، تیرے بزرگ ہر دھرم اور چوروں کے یار ہیں، یہ رشوت خور سب لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ چائے پانی مل جائے، نہ وہ پرواہ کرتے ہیں کہ یتیموں کو انصاف ملے، نہ بیواؤں کی فریاد ان تک پہنچتی ہے۔ اس لیے قادر مطلق رب الافواج جو اسرائیل کا زبردست سورما ہے فرماتا ہے، آؤ میں اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے انتقام لے کر سکون پاؤں، میں تیرے خلاف ہاتھ اٹھاؤں گا اور خام چاندی کی طرح تجھے پوٹاش کے ساتھ پگھلا کر تمام میل سے پاک صاف کر دوں گا، میں تجھے دوبارہ قدیم زمانے کے قاضی اور ابتدا کے سے مشیر عطا کروں گا، پھر یروشلم دوبارہ دارالانصاف اور وفادار شہر کہلائے گا، اللہ سیون کی عدالت کر کے اس کا فدیہ دے گا، جو اس میں توبہ کریں گے ان کا وہ انصاف کر کے انہیں چھڑائے گا، لیکن باغی اور گنہگار سب کے سب پاش پاش ہو جائیں گے، رب کو ترک کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ بلوت کے جن درختوں کی پوجا سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، ان کے باعث تم شرمسار ہوگے، اور جن باغوں کو تم نے اپنی بت پرستی کے لیے چن لیا ہے ان کے باعث تمہیں شرم آئے گی۔ تم اس بلوت کے درخت کی مانند ہوگے جس کے پتے مرجھا گئے ہوں، تمہاری حالت اس باغ کی سی ہوگی جس میں پانی نایاب ہو، زبردست آدمی پھوس اور اس کی غلط حرکتیں چنگاری جیسی ہوگی، دونوں مل کر یوں بھڑک اٹھیں گے کہ کوئی بھی بجھا نہیں سکے گا۔